आकाशवाणी दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से कथित दुर्व्यवहार मामले में दिल्ली भाजपा ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मुद्दे पर पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाया। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक सरगर्मी तेज। प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां, सार्वजनिक बैठकें और रोड शो कर रहे हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी किया गया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने बोल्टन औषधि संस्थान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से कथित दुर्व्यवहार मामले में आज दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान श्री सचदेवा ने कहा कि सुश्री स्वाति मालीवाल के सम्मान में भाजपा सड़क पर उतरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली है। श्री सचदेवा ने कहा कि पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले में 36 घंटे बाद अपनी बात रखते हैं कि सुश्री मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर दुर्व्यवहार हुआ है। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार होगा तो उनकी पार्टी न्याय के लिए सड़क पर उतरेगी।
दिल्ली की ये बहनें स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ आई हैं। लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। एफआईआर की मांग भी कर रहे हैं, हम स्वाति के स्वाभिमान की भी मांग कर रहे हैं और जो जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज अगर वो चुप रहती हैं तो दिल्ली की महिलाओं का एक बहुत बड़ा जो प्रेरणा है वो टूटती है। इसलिए बहनें तो सड़क पे आई हैं, उनके समर्थन में आई हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी अपना सामने आके अपना बयान दें।
नई दिल्ली में भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि श्री केजरीवाल को उनके निवास पर हुई घटना के पीछे का सच लोगों को बताना चाहिए। उन्होंने श्री केजरीवाल से पूछा कि स्वाति मालीवाल के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने वाले उनके निजी सहायक वैभव कुमार के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार तेज हो रहा है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता का समर्थन मांग रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजधानी की 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा के प्रत्याशी दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट।
दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार की कमान संभाल ली है। वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भाजपा के 3 उम्मीदवारों उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मनोज तिवारी, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बांसुरी स्वराज और चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल के पक्ष में दिल्ली के हैदरपुर, मलकागंज और चिराग दिल्ली में जनसभाएं की। वहीं भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदो के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल और उदित राज के समर्थन में मॉडल टाउन और जहांगीरपुरी क्षेत्र में रोड शो किया। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार महावल मिश्रा ने तिलकनगर क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने जंगपुरा और लाजपत नगर इलाके में कारोबारियों के साथ बैठक की। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने मुनिरका गांव और मोतीनगर क्षेत्र में पदयात्रा की। दक्षिणी दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह विधोड़ी ने अपने क्षेत्र में एक अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित किया। प्रमुख दलों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान।
दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अपनी स्वीप पहल के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज दिल्ली हाट में वोटर मेले का आयोजन किया। इस दौरान नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पतंगों पर स्लोगन राइटिंग और मिट्टी के बर्तन बनाना जैसी गतिविधियां की गईं। इसके अलावा रिठारा स्थित JIMS कॉलेज और बादली स्थित ITI संस्थान में छात्रों को मतदान प्रक्रिया से अवगत कराया गया। दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा राजधानी के मटियाला क्षेत्र में भी पार्क में लोगों को सुबह सैर के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पल में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली की एक अदालत ने आज आबकारी नीति घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है। ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने दर्ज कराया था। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत ने कल फैसला सुरक्षित रखा था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि आम आदमी पार्टी को भी कथित आबकारी नीति घोटाले में आरोपी बनाया जाएगा। ये पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल को किसी मामले में आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने ये बात दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि मामले में जल्द ही एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्त की रिहाई के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश BR गवई और संदीप मेहता की एक पीठ ने आज कहा कि इस मामले में रिमांड कॉपी नहीं सौंपी गई, इसलिए गिरफ्तारी निरर्थक है। जांच अदालत प्रबीर पुरकायस्त पर जमानत शर्तें लागू करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज नई दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। गृह मंत्रालय के अनुसार कई अन्य आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र ईमेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। ये आवेदन 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों से प्राप्त हुए थे। फर्जी पासपोर्ट पर लोगों को विदेश भेजने वाले एक एजेंट को पुलिस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI से गिरफ्तार किया है। यूरोप के देश साइप्रस से भारत आने वाले एक छात्र के दस्तावेजों का मिलान न होने पर इस एजेंट का खुलासा हुआ है। पुलिस उपायुक्त IGI उषा रंगनानी ने बताया कि इस एजेंट ने जाली पासपोर्ट तैयार कर वर्ष 2018 में छात्र को भारत से साइप्रस भेजा था और छात्र अब वापस भारत आया था। पकड़े गए एजेंट की पहचान पंजाब के गुरदासपुर जिले के निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट पर लोगों को विदेश भेजने वाले दो एजेंटों को IGI हवाई अड्डे से कल भी गिरफ्तार किया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने औषधि अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए बोल्टन औषधि संस्थान विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एम्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस समझौता ज्ञापन पर दोनों संस्थानों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी से कर्मचारी तथा विद्यार्थियों के आदान प्रदान, शैक्षणिक सम्मेलन तथा सहयोगी डिग्री कार्यक्रम जैसी विभिन्न पहल की जा सकेंगी। एम्स के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने कहा कि ये समझौता वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विश्व के साथ विशेषज्ञता को साझा करने में संस्थानों के लिए सहायक होगा। विश्वविद्यालय स्तर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज दिल्ली के केंद्रों पर होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि अब ये परीक्षा 29 मई को आयोजित की जाएगी। नए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा कि आज दिल्ली के केंद्रों में होने वाली रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और सामान्य विषयों की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। एजेंसी के अनुसार दिल्ली के अलावा सभी अन्य शहरों में परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। दिल्ली पुलिस ने नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राजधानी में से नो टू ड्रग्स विषय पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू की है। ये प्रतियोगिता 15 जून तक चलेगी, जिसका उद्देश्य नशा मुक्त भारत के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को अपनी बनाई हुई पेंटिंग को दिल्ली के दरियागंज स्थित अपराध शाखा के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पते पर भेजना होगा। इसके अलावा ncord2022@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से भी पेंटिंग को भेजा जा सकता है। गृह मंत्रालय ने लोगों को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने की सलाह दी है। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर सरकारी अधिकारियों के छद्म रूप में साइबर अपराधियों द्वारा धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल गिरफ्तारी की शिकायतें बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है और पता चला है कि इसे सीमा पार अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। मंत्रालय के अनुसार ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर दें। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में आज दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयकिशन शर्मा, पूर्व निगम पार्षद सुरेंद्र शर्मा, पूर्वी दिल्ली लोकसभा पर्यवेक्षक जयकिरण चौधरी सहित कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि भाजपा दिल्ली की सातों सीटें जीतने जा रही है। कार्यक्रम में भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान भी उपस्थित रहे। हरियाणा के फरीदाबाद में 25 मई को होने वाले चुनाव में तैनात चुनावकर्मी अपना मतदान 19 से 21 मई के बीच करेंगे। ये सभी कर्मी जरूरी सेवा श्रेणी के अंतर्गत चुनाव की तारीख से पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। फरीदाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने आज एक प्रेस वक्तव्य में ये जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने आज कहा कि 6G प्रौद्योगिकी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और उत्पादकता बढ़ाने की संभावना रखती है। नई दिल्ली में भारत 6G 2024 सम्मेलन में श्री कृष्णन ने कहा कि 6G प्रौद्योगिकी का विकास उसी तरह का असरदार होगा जिस तरह का असर पहली औद्योगिक क्रांति में था। उन्होंने कहा कि 6G विशाल डेटा उत्पत्ति को बढ़ावा देगी। ये प्रौद्योगिकी सीखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर इनपुट प्रदान करेगी। श्री कृष्णन ने सम्मेलन में एक बेहतर डिजिटल अवसंरचना में सहयोग करने के लिए उद्योगपतियों को प्रेरित किया। राजधानी में आज तेज धूप रहने से लोगों को काफी गर्मी महसूस हुई। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहते हुए 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से कथित दुर्व्यवहार मामले में दिल्ली भाजपा ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मुद्दे पर पार्टी संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाया। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक सरगर्मी तेज। प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां, सार्वजनिक बैठकें और रोड शो कर रहे हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी किया गया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने बोल्टन औषधि संस्थान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।